نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. الحمد لله، آج بہت ہی خوبصورت سورہ، سورت آل عمران ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسری سورت ہے مصحف کے اعتبار سے، مدنی سورت ہے. اس میں 200 آیات ہیں، 20 رکوعات ہیں. اس کا نام آل عمران، عمران کی فیملی. اور عمران کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام. اس صورت میں آپ ان کی فیملی کا ذکر پڑھیں گے، حضرت مریم کی والدہ حنہ کا بھی ذکر پڑھیں گے، تو اس صورت کا نام اس حوالے سے آل عمران ہے. اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت اس لحاظ سے ہے کہ یہ حدیث مسلم کی آپ سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ پاورفل سورہ ہے یہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. زہروین کو پڑھا کرو. زہروین مینس دو زہرا. زہرا کا معنی کیا ہے؟ صاف، روشن، چمکدار اور روشن کرنے والی چیز، خود بھی ویل لٹ ہے اور روشن بھی کرتی ہے. اور یہ اس کو زہرا کیوں کہا گیا؟ یہ ایک زہرا ہے اور البقرہ دوسری زہرا ہے، تو اس لیے دو زہرا ہو گئی، تو زہرا وین. ٹھیک ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے نا. تو اس سورہ کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا نام کہ یہ زہرا ہے. اور اس میں جو نور ہے، جو ہدایت ہے، اس کی وجہ سے، اور سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح نور اور ہدایت ہے، اس کی وجہ سے ان دونوں کو زہروین کہا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہروین کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران کو. کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی یا پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کریں گی. آپ سوچیں کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ کتنی پاورفل سورہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے آگے، تو قرآن کی سفارش مانی جائے گی. یہ اور سورہ بقرہ سمجھ لیں ٹوئنز ہیں. زہروین سے بھی آپ کو پتہ چل گیا، ویسے بھی بہت ساری سملیرٹیز ہیں ان دونوں سورہ. آپ دیکھ رہے ہوں گے دونوں سورہ ایک ہی طرح کے حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوئی ہیں، الف لام میم. اور دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی صفات بیان کی ہوئی ہیں. سورہ بقرہ میں قرآن کی ہدایت پر ایمان لانے والوں کی بات ہے. آل عمران میں ان میں قرآن پاک میں جو کجی کرتے ہیں، جو شوشے نکالتے ہیں، ان کی بات ہے. اور سورہ بقرہ میں تخلیق آدم کا بیان ہے، سورہ آل عمران میں تخلیق عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے. دونوں میں بھی سملیرٹی ہے نا، کیونکہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو دونوں کی تخلیق یعنی نارم سے ہٹ کے ہے. ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ ہے. سورہ بقرہ میں آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ لمبی ان کی جو باتیں آئی ہیں وہ سب پڑھی ہیں، جبکہ اس سورہ میں آپ دیکھیں گے عیسائیوں کے ساتھ بات کی گئی ہے. اور دونوں صورتوں کی جو اینڈنگ ہے وہ دعا کے ساتھ ہے. تو آپ اس سے بھی سملیرٹی دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مماثلت کیسے پائی جاتی ہے. اور دونوں کی میں جو اینڈ کی دعائیں ہیں نا، وہ بہت خوبصورت دعائیں ہیں، بہت زبردست دعائیں ہیں. तो इस तरह से आपने देखा ये चंद एक पॉइंट्स कि किस तरह इन दोनों सूरतों में क्या चीजें कॉमन आपको मिलेंगी। दूसरे, आपने पढ़ा पहले के सूरह बकरा में उम्मत मुस्लिमा की तश्कील की बात है कि कैसे ये उम्मत मुस्लिमा खड़ी होगी, किन चीजों पर अमल करेगी, कैसे इसने आगे काम करना है। आप इस सूरत में देखेंगे जो मेन आइडिया ना वो जम जाने का है कि स्टेडफास्टनेस। अलबकरा में करिकुलम आपको मिल गया ना कि ये है आपका करिकुलम उम्मत मुस्लिमा का, ये उनका मनहज है, इस पे इनको चलना है और दुनिया की लीडरशिप संभालनी है। लेकिन इस रास्ते में चैलेंजेस आएंगे तो तुमने जम जाना है, लोग तुम्हें वसवास का शिकार करेंगे, शकुक व शुभात डालेंगे और बहुत सारे और हर्डल्स आएंगे इस रास्ते में, लेकिन तुमने जम के चलना है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मोमिन की जो दो सिफात थी वो क्या थी, गैब पर ईमान और समयाना वाताना कहना। लास्ट सबक में हमने ये बात की थी और इस सूरत में आप शुरू में देखेंगे यही चीज के ऊपर के जो गैब पर ईमान है ना, इसमें लोग शकुक व शुभात डालेंगे, तो आपने हिलना नहीं है। ठीक है। और दूसरा, इस सूरत के अंदर समयाना व अताना के ऊपर जो जम जाना है उसके ऊपर भी बात आएगी, क्योंकि ये सूरत दो मजामीन के गिर्द घूमती है, यानी दो किस्से समझ लें कि दो मशहूर वाकयात हैं जो इस सूरत में डिस्कस हुए हैं। एक वाकया मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन वो 1 आयत से लेके 120 आयत तक है, जिसमें कि नजरान के वक्त, जो नजरान का एक वफद आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बहस मुबाहसा किया था इस्लाम के बारे में, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातचीत फरमाई थी और उनको जो जो उनके साथ मुबाहसा हुआ था उसका जिक्र इस सूरत में, और तकरीबन 1 से 120 आयत तक सब समझ लें कि इसके गिर्द घूमता है। उसके बाद आप देखेंगे आयत 121 से लेकर आखिर तक, आप देखेंगे कि तकरीबन आखिर तक कि ओहद के वाकयात हैं, ओहद के बाद के जो वाकयात हैं, क्योंकि ओहद में मुसलमानों को बहुत बड़ा सेटबैक मिला था, और उसमें क्या हुआ था कि मुसलमानों को शिकस्त तो नहीं कह सकते मगर एक जहनी धचका भी लगा था, नुकसान भी हुआ था, और ऐसे वक्त के अंदर मुसलमानों को जो अल्लाह ताला ने तसल्ली तशफी फरमाई है उसका आप जिक्र देखेंगे। किस तरह जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है ना कोई बात, और कितने प्यारे तरीके से समझाती है, अल्लाह ताला ने इस तरह मुसलमानों को तसल्लियां दी हैं, तशफियां दी हैं, किस तरह अल्लाह ताला ने उनको ढारस बंधाई है, ये आप इस पार्ट में देखेंगे। और बहुत ही खूबसूरत ये भी है क्योंकि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे वाकयात आते हैं जिनमें हमें भी धचका लगता है, हमें सेटबैक मिलता है, और हम अपने लिए भी उससे बहुत बड़ी रहनुमाई ले सकते हैं। तो इसलिए वो हिस्सा भी बहुत दिलचस्प है। पहले हिस्से के अंदर आपको मिलेगा किस तरह आपने अपने ईमान को शकुक व शुभात से पाक रखना है, कैसे आपने अपने ईमान की में जब लोग शकुक व शुभा डालेंगे, वसवास डालेंगे, तो किस तरह से आपने चलना है, वो सब आपको पहले हिस्से में, यानी अल्लाह की तौहीद के ऊपर बहुत ज्यादा जोर, क्योंकि जाहिर ईसाइयों का अकीदा ही तो खराब था, वो उसकी बेस के ऊपर ही तो आगे सारी खराबी है ना। तो अकीदा है जो है वो गैब पे ईमान पे मुश्तमिल है, और गैब पे ईमान को मुतजलजल नहीं होने दे रहा। अब सूरह फातिहा और सूरह बकरा और सूरह आले इमरान के अंदर क्या मुमासलत है। सूरह फातिहा में हमने पढ़ा एदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। दो गरोह की बात आई थी, एक मग़दूबी अलैहिम थे और दूसरे दौलीन थे। तो मग़दूब कौन थे, हम कहते हैं वो यहूद थे। तो यहूद की बात बनी इसराइल की बात आ चुकी है कहां पे? सूरह बकरा में। अब किसकी बात है? अब ईसाइयों की बात है। ठीक है, तो आपको उस वक्त भी बताया था कि मकदूब कौन है, जो इल्म पा के और उसके बाद भटक गए। और दौलीन कौन है? जो इल्म नहीं रखते थे, इल्म के बगैर थे और वो गुमराह हो गए। ठीक है, तो दोनों में ये फर्क है। एक किस्सा आपको बता देती हूँ जो इसकी बैकग्राउंड में, चूंकि हम शुरू की आयात देखेंगे तो उस तनाजुर में एक रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजरान के नसारा का 60 आदमियों का एक काफला आया, जिनमें 14 सरदार थे और उन 14 में से 3 शख्स बहुत मुअज्जज थे। तमाम इख्तियारात उनके कब्जे में थे और इन 3 में से एक आदमी अब्दुल मसीह ऐसा था कि उसकी राय सब पे मुकद्दम समझी जाती थी। दूसरा सरदार ईहम था और तीसरा शख्स जिसके इंतजाम में तमाम मदारिस वगैरह थे, उनके मदरसे थे, यानी सारे, बहुत बड़ा डेलीगेशन एक आया था। और आपको पता है डेलीगेशंस का साल कौन सा था? जिन्होंने सीरत पढ़ी भी है, 9 हिजरी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शुरू का पार्ट इस सूरह का उस वक्त का नाजिल हुआ है, ये जब वफद आया था तो यानी 9 हिजरी के करीब। और जो सेकेंड पार्ट है, जो उहद के बाद का नाजिल शुदा, वो यानी उहद के बाद यानी तकरीबन 4 हिजरी का टाइम है। तो इस तरह से 3 हिजरी या इस तरह वो है। तो वो आगे आयात आएंगी। ये जो हम पहली शुरू की आयात पढ़ेंगे, 32 आयात शुरू की, ये तमहीद है, यानी इंट्रोडक्शन एक तरह से, अल्लाह की सिफात के बारे में बातें हैं। और ये सारी आयात उतरी उस वक्त ही, लेकिन अगली 31 आयात में तो आप डायरेक्ट बात देखेंगे जो इन नसारा के साथ की गई। और उसके बाद का मैंने आपको बताया हिस्सा उहद का। तो चलते हैं दोबारा उस किस्से की तरफ कि वो तमाम मदारिस का इंचार्ज था तीसरा आदमी, उसका नाम बनू हारिसा था। तो उस आदमी की इतनी बड़ी यानी वैल्यू थी, उसने अपनी इतनी अपने अपना स्टेटस बनाया हुआ था अपने अमाल की वजह से, उसकी बड़ी इज्जत थी, यानी नसारा के बादशाह भी उसकी इज्जत और तकीर करते थे, उसकी खिदमत करते थे। तो अबू हारिसा जो था वो एक खच्चर पे सवार था, उसके पहलू में उसका भाई था किरस बिन अल्तमा। अबू हारिसा के खच्चर ने ठोकर खाई तो उसके भाई ने कहा, खराबी हो, अच्छे रसूल के पास जा रहे हैं। अबू हारसा ने कहा, खराबी तुझे हो। फिर्ज ने कहा, मुझे क्यों खराबी हो? अबू हारसा ने कहा, इसलिए कि जिनके पास जा रहे हैं वो बेशक अल्लाह के वही रसूल हैं जिनके हम मुंतजर थे। किरज बिन अलकमा ने कहा, फिर ईमान क्यों नहीं लाते? उसने कहा, अगर मैं ईमान ले आऊं तो जो तुम ये सब देख रहे हो ना, मेरी कौम जो मेरी इतनी इज्जत करती है, फिर कौन करेगा मेरी ये इज्जत व तकरीम? किर्स कहता है कि इसकी ये बात सुन के मैं खामोश हो गया और फिर ये किर्स मुसलमान हो गए थे और उन्होंने इस हिकायत को बयान किया। दूसरा, इब्ने इसहाक में एक और वाक्य आता है कि जब नसारा का ग्रोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कब हाजिर हुआ? 9 हिजरी में। ठीक है, इसको याद रखना था कि आपको पता चले कि देखिए जो सूरतों में वाकयात है ना, वो ऐसे नहीं है कि जैसे तारीख चल रही थी तो जो पहले हुआ वो पहले या जो बाद में हुआ। अल्लाह ताला ने जिस तरह से अः वही की उसके मुताबिक आयात को रखा गया है, और इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। तो जब नसारा का गुरु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। ये लोग बहुत उम्दा लिबास पहने हुए थे, जिन सहाबा ने उनको देखा था वो कहते हैं, इनके बाद हमने कोई ऐसा ग्रोह देखा ही नहीं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ के बैठे थे। अब उनकी भी नमाज का वक्त हो गया तो मस्जिद में ही वो एक तरफ नमाज पढ़ने लगे। आपने फरमाया, पढ़ने दो और उनको कुछ ना कहो। उन्होंने मशरिक की तरफ मुंह करके इबादत की। जब उनके उलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की तो आपने फरमाया, तुम इस्लाम ले आओ। वो कहने लगे, हम तो पहले ही मुसलमान हैं। आपने फरमाया, तुम मुसलमान नहीं हो, इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा, बेशक हम तो मुसलमान हैं। आपने फरमाया, तुम झूठ बोलते हो, तुम ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा बताते हो, सलीब की पूजा करते हो, सुअर को खाते हो, ये बातें तुम्हें इस्लाम इख्तियार करने से रोके में। वो बोले, ऐ मोहम्मद, अच्छा ये बताओ ईसा का बाप कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की ये आयात आप पर उतारी, जो 80 से जायद तकरीबन आयात बयान की जाती हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी। जैसे मैंने आपको बताया 1 से 120 तक इसमें आपको इनके बारे में बात मालूम। देखते हैं सूरह को, इस चीज को जहन में रख के भी आप सूरह को देखिएगा कि अब ये नजरान का वफद आया हुआ है और उसको किस तरह से उनके ऊपर इफेक्ट हो रही होंगी ये सूरतें, किस तरह से सूरत का ये पार्ट और किस तरह से हमने अपने लिए लेना। क्योंकि शकों को शुभात डालने वाले, वसवास डालने वाले उस जमाने में भी थे और आगे भी रहेंगे, और आज तो ये फितना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जरूरी है कि इल्मे गैब जो है वो पुख्ता हो और पक्का हो वो हमारे अंदर। तो अल्लाह ताला की वहदानियत पे बहुत बात है यहाँ पे, अल्लाह ताला की सिफात पे भी बात है। तो देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्तआत है। अलिफ लाम मीम यानी जब अल्लाह ताला ने हमें सूरह फातिहा में दुआ सिखाई, एहदिना सिरात मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे दे, उस पे चला दे। तो इसके बाद आप देखते हैं सूरह बकरा भी अलिफ लाम मीम से स्टार्ट हो रही है, सूरह आले इमरान भी अलिफ लाम मीम से स्टार्ट हो रही है। यानी अब इसके बाद क्या हमें बताया जा रहा है कि देखो अपनी अकल को तुम सबमिट करो पहले। ये हरूफ हैं जिनका माना तुम नहीं जानते, हालांकि ये तुम्हारी ही वोकैबलरी के हरूफ हैं। ये अलिफ लाम मीम अल्फाबेट्स हैं, तुम्हारी वोकैबलरी के हैं ना, तुम इनको बोलते हो, इन्हीं से अल्फाज बनाते हो, लेकिन तुम इनका माना नहीं जान पा रहे। तुम बताओ कि इसका माना क्या है? अल्लाह के यहाँ हर एक लफ्ज का जो भी कुरान में आया उसका कोई ना कोई माना है, तो इसका माना क्या है आप फिगर आउट नहीं कर पाते, कितना भी जोर लगा ले नहीं समझ में आता। हाँ हवा में तीर चलाते रहे, अकल के घोड़े दौड़ाते रहे, मतलब ये होगा शायद, ये होगा शायद, ये होगा, लेकिन कोई चीज भी ऑथेंटिक नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हें फिर एतराफ करना चाहिए कि तुम सब कुछ नहीं जानते, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया। और इस एटीट्यूड के साथ तुम इस किताब की तरफ आओगे तो तभी यहां से हिदायत पा सकोगे। अगर तुम इस एटीट्यूड के साथ आते ना, हमें तो सब कुछ पता है, मैं तो सब जानती हूं, मुझे तो पहले ही सब पता है, तो फिर यहां से कुछ नहीं हासिल कर सकोगे। तो पहले क्या करना है, अपने दिमाग को एम्प्टी करें और ये एतराफ करें मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे घुटने टिकवा दिए गए ना, अलिफ लाम मीम से ही इंसान को ये बावर करा दिया गया, रियलाइज कराया गया, तुम्हें नहीं पता, अल्लाह को पता है। फर्स्ट थिंग इज कि आप ये इतराफ करते हैं, मुझे नहीं पता अल्लाह को पता है, ठीक है, फिर ही आगे बात शुरू होगी। और अगर ये ही रियलाइज नहीं किया और अपने आप को अकले कुल समझा है ना, मुझे पता है, मैं बहुत जानती हूं, मैंने पीएचडी की, मैंने मास्टर्स किया, मैंने इतनी किताबें पढ़ी, तो फिर यहां से कुछ पा नहीं सकते। तो इसके लिए तैयार हैं आप कि अलिफ लाम मीम पे ही आप सरेंडर करते हैं, गिव अप करते हैं, हाथ उठा दे, मुझे नहीं पता, अल्लाह तुझे पता है। अगर रेडी हैं तो फिर आगे हम चलेंगे, तो फिर आप सीखेंगे भी। और अपने इल्म को ही आप काफी समझते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो आते भी हैं कुरान को सीखते भी हैं, लेकिन उसके बाद रवैया क्या होता है, हमें तो पहले ही पता है, हमें तो सब पता है, हम तो जानते हैं। तो वो आप जानते हैं तो फिर आप क्या लेंगे? देखिए आप किस बर्तन में कोई चीज भर सकते हैं जो खाली होता है, और जो पहले ही भरा हो उसमें कुछ भरने की गुंजाइश नहीं होती। जो इंसान कहे मुझे पहले ही सब कुछ आता है, उसको क्या सिखाएंगे? बच्चा आपके सामने बैठे और कहे कि आप मुझे क्या सिखाएंगी, मुझे तो पहले ही सब कुछ आता है, तो बात तो वहीं खत्म हो जाती। और जिस दिन हमने अपने आप को एम्प्टी किया ना, खाली किया कि मैं अब तैयार हूं ये इल्म लेने के लिए, उस दिन ये इल्म आपके अंदर आएगा। तो पहले खाली करें अपने अंदर को, तमाम किस्म के तासुबात निकालें, तमाम किस्म की इल फीलिंग्स निकालें, और इस बर्तन को खाली करके फिर आएंगे जैसे एक फकीर होता है कि अल्लाह मैं नहीं जानती, अलिफ लाम मीम पे ही मुझे पता चल गया, अल्लाह मैं नहीं जानती, अल्लाह आप जानते, आप मुझे सिखाएं, आप मुझे बताएं हिदायत क्या है। ठीक है, तो अलिफ लाम मीम से हम ये सीख लें, बाकी हमें इसकी तावीलात करने की जरूरत नहीं। अलिफ का माना क्या, लाम का माना क्या, जिस चीज का माना अल्लाह ने नहीं बताया तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन का फायदा भी क्या। कोई भी चीजें कोई कह दे अलिफ से अल्लाह, लाम से पता नहीं कुछ और, मीम से मोहम्मद, तो देखिए वो तो उनके अपने आइडियाज हो सकते हैं, कोई भी चीज ऑथेंटिक थोड़ा ही है। इल्म सिर्फ यानी वो है जो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि ये ऐसे है, बाकी तो फिर हमारे अपनी सोच हो सकती है। आगे वही आयत है जो हम आयतल कुर्सी के आपने शुरू में पढ़ा था, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुल हय्युल क़य्यूम, वहां पे हमने बहुत डिटेल में इसको देखा था कि इसका माना क्या है। जिसने नहीं वो लेक्चर सुना वो जरूर उस लेक्चर को सुने। अल्लाह कौन है, ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला का तारुफ ये है। अब आप थोड़ा थोड़ा इस चीज को भी सोचते रहें कि एक ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि अल्लाह है लेकिन ईसा भी खुदा है, या ईसा अल्लाह का नऊज़ु बिल्लाह बेटा है, ऐसी बात करें, तो ला इलाह इल्ला हुआ, इलाह कौन होता है, जो काबिल वो इबादत के, अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। मैंने आपको बताया ना, ला इलाह जब आप कहते हैं तो लाए नफी जिन्स इसको कहते हैं, यानी पूरी जिन्स की नफी कर दी, चाहे वो जानदार है, चाहे वो बेजान है, चाहे वो इंसान है, या पत्थर है, या शजर है, या हजर है, जो भी है, कोई भी, चाहे वो फरिश्ते हैं, चाहे वो जिन्नात है, कोई भी नहीं इबादत के लायक। तो सबसे पहले तो नफी की सबकी, फिर उसके बाद इल्ला हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी ला इलाहा और इल्ला के बाद जो बात आती है, तो इससे पता चलता है कि यानी सिर्फ और सिर्फ ये बात है, बाकी पिछली सारी बात की नफी हो गई। तो कोई इलाह है ही नहीं सिवाय उसके, उसके किसके, अल्लाह के, अल हय अल कयूम, वो हई है और कयूम है। एक बहुत दिलचस्प बात है इस आयत के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इस्मे आजम जो है वो सूरह आले इमरान और सूरह बकरा और सूरह ताहा में है। तो जो सिमिलैरिटीज निकाली उलमा ने, तो ये आयत निकलती है सूरह बकरा में भी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम है, और सूरह ताहा में एक आयत है जिसमें भी अल हय्युल क़य्यूम है। तो इससे पता चलता है कि हो सकता है कि हय और कयूम यही इस्मे आजम हो। और आपको पता है इस्मे आजम के जरिए जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। बदर के मौके पर जिस वक़्त के कुफार के आमना सामना हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में दुआ क्या थी, या हय्यू या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। ठीक है, और ये यानी अल्लाह ताला के अस्मा, इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को पुकारा था। तो अल हई कौन है, वो जो जिंदा जात है, यानी उसके ऊपर कोई मौत नहीं, कोई ऐसा वक्त नहीं था जब वो नहीं था, वो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, मौत उसके लिए नहीं है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चाहे वो कोई रसूल है, नबी है, फरिश्ता है, जिन है, कोई भी है, एक सिर्फ अल्लाह की जात ऐसी है जिसके ऊपर मौत नहीं है। मौत तो उसकी मखलूक है, मखलूक खालिक को कैसे दे सकती है, उसने तो मौत को खुद पैदा किया हुआ। तो इसलिए ये बात को समझ लें कि जब मौत उसकी मखलूक ही है तो मखलूक उसको कैसे आ सकती है, सोचे। तो वो अल हई है, ये अल्लाह की सिफत है, सिर्फ और किसी की नहीं हो सकती। तुम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हो, ईसा अलैहिस्सलाम तो है ही नहीं, उनको तो मौत आनी है। अभी तो वो जिंदा है लेकिन उनको मौत आनी है, और एक वक्त था कि वो नहीं थे। और अल-कय्यूम, और अल-कय्यूम क्या है? अल-कय्यूम जो खुद भी कायम है और दूसरों को भी कयाम देता है, कायम रखता है। यानी अगर आसमान कायम है तो इसलिए कि अल्लाह ने उसको कायम रखा हुआ है, जमीन कायम है तो इसलिए कि अल्लाह ने उसको कायम किया हुआ है। हम कायम है, हम हमारी हस्ती चल रही है तो इसलिए कि अल्लाह है जो चलाने वाला है। समझाई बात? यानी जो सस्टेनर है, मेंटेनर है, जो केयर करता है, जो थामने वाला है, और वो थामने वाला ऐसा है कि जिसको ना नींद है ना ऊंग है, वो जिंदा है। क्योंकि नींद और ऊंग भी जो है ये भी मौत की ही, यानी बहने कह लो, जैसे कहते हैं ना नींद भी मौत की बहन है, तो उसको नींद नहीं आती, ऊंग नहीं आती, वो जिंदा है। और ये जो नींद और ऊंग है ये मखलूक की सिफात है। आप खुद सोचें, आप ड्राइविंग करते हैं, आपको अगर जरा देर को ऊंग आ जाए तो क्या होगा? गाड़ी का क्या होगा? वो तो कहीं जाके टकरा जाएगी। जरा देर को भी आप स्टेयरिंग के पीछे बैठे हुए आप सो गए अगर, तो और सोचें ये कायनात का चलाने वाला, अगर उसको ऊंग या नींद आ जाए तो उसकी तो मखलूक का क्या हाल हो। वो अगर सोने लगे करोड़ों करोड़ों साल से, पता नहीं कब से ये कायनात चल रही है, वो अगर सो जाए या उसको ऊंग ही आ जाए, इतना बारीक निजाम है, इस कदर सेंसिटिव निजाम है कि जिसकी एक एक चीज कैलकुलेटेड है, तो ये तो सब तबाह हो जाए। वो नींद और ऊंग से पाक है, यानी जिंदा एक होना, और एक ये कि उसकी हयात ऐसी है कि जिसमें कोई इस चीज का भी शायबा नहीं। मौत तो दूर की बात है, नींद ऊंग तक नहीं है उसको। तो अब हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कैसी जात है। यहां से उसका एक तारुफ हमें मिला, और यहां से हमें ये भी पता चला कि हम जब सवाल करें, दुआ करें, मांगे, तो हई और कयूम से मांगे। हम हई को छोड़ के, जिंदा को छोड़ के मुर्दों से जाके मांगते हैं, मुर्दों पे नजरें लगाते हैं, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? जो आप वजूद भी नहीं रखते, जिनको मौत आ गई, उनसे हम उम्मीदें लगाते हैं। तो इकबाल ने कहा था ना, बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? और किसको कुफर कहते हैं फिर? और किसको खबर कहते हैं कि उनसे उम्मीदें हैं, खुदा से ना उम्मीदें? इसलिए पता चलता है हमें कि हई और कयूम से ही सिर्फ सवाल करना है। अब इसके अंदर क्या आ गया? तौहीद आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह इसके अंदर आ गया, जो रूट है हमारे दीन का, हमारे अकीदे की बुनियाद है। और याद रखें ये मामूली बात नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, क्योंकि हम तो कहते रहे हैं, तो सुनते रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप क्या आपको पता है कि ये पूरी जिंदगी को बदल देने वाली चीज है? ये एक कलमा जिसके ऊपर कुफर और इस्लाम की जंगें हुई, जिसके ऊपर वो काफिर इतने स्टबन हो गए कि उन्होंने कहा ये नहीं हम बोल के रहेंगे, बस ये कलमा नहीं हमने कहना। उनका यही प्रॉब्लम था ना, बाकी तो अभी अहकाम उतरे ही नहीं थे। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं करना, इला है अल्लाह लेकिन उसके अलावा और भी है, ये था उनका प्रॉब्लम। ये नहीं था कि वो कहते थे हम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं लेकिन उसके अलावा भी है ये। लेकिन जब कह दिया ला इलाहा तो खत्म ही हो गई, सबकी बात खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा कलमा है, ये ऐसे ही नहीं इसके बारे में कहा गया कि एक पलड़े के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए और दूसरे में जमीनों आसमान और सारी इसकी चीजें रख दी जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा वजनी होगा। ये इतना बड़ा कलमा है, हमने तो जाना ही नहीं। तो ये तो पूरी जिंदगी के ऊपर इतने गहरे असरात छोड़ता है, इसलिए कि ये इंसान को सब गुलामियों से निकाल देता है और एक अल्लाह की गुलामी के अंडर ले आता है। ये अकीदा वो है जो इनकलाब ले आता है जिंदगी में, पूरी जिंदगी को अपसाइड डाउन कर देता है। इसलिए कि इंसान एक नया इंसान बन जाता है कि अल्लाह ही मेरा मालिक है, वो ही मेरा खालिक है, वो ही मेरा राजिक है, वो ही मेरा पालने वाला है। मैंने मदद चाहनी है तो उससे, मैंने दुआ करनी है तो उसके आगे, मैंने सजदा करना है तो उसके आगे। ये अकीदा गैर अल्लाह के आगे झुकने से इंसान को निकाल देता है। उस गैर अल्लाह के आगे नहीं इंसान झुक सकता, सारे गैर अल्लाह से उम्मीदें तोड़ देता है, सिर्फ एक अल्लाह से उम्मीद लग जाती है। वो फिर किसी और का निजाम नहीं कबूल करता, किसी और का कानून नहीं एक्सेप्ट करता। वो कहता है कानून होगा तो सिर्फ अल्लाह देगा कानून, वो अगर करोड़ों में भी अकेला हो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, डंके की चोट पे अल्लाह की मानूंगा और उसके मुकाबले में और किसी की नहीं मानूंगा। अल्लाह का कानून चलेगा, उसका निजाम चलेगा, उसके उससे मैं अखलाक सीखूंगा, अल्लाह मुझे सिखाएगा। तो आज तो गैरों से हम एटिकेट सीखते हैं ना, लेकिन यही फर्क होता है एक रब्बानी में और एक रब को छोड़ देने वाले में। ठीक है, तो फिर इंसान सारे मामलात में, चाहे वो इंडिविजुअल लाइफ की हो, चाहे वो अपनी सोसाइटी में हो, सब में अल्लाह की तरफ देखता है, उसकी नजरें हर वक्त अल्लाह की तरफ होती है। अल्लाह ने जिसको अच्छा कह दिया वो अच्छी चीज है, चाहे मेरी अकल माने ना माने। अल्लाह ने जिस चीज को बुरा कह दिया वो बुरी ही है। तो ये अकीदा भी दिल में जड़ पकड़ना चाहिए, और ऐसे ही नहीं दिल में आके जमता, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ले लेने से नहीं जमता, बल्कि इसके लिए हर वक्त हमारी नजर अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, तवज्जो उसकी तरफ होनी चाहिए, तब ये जड़ें गहरी होती हैं। या अब मैं अल्लाह से पूछूं इस मामले में क्या करना, मैं अल्लाह से पूछूं शादियां कैसे करनी है, मैं अल्लाह से पूछूं कि कोई फौत हो जाए तो क्या करना है, मैं अल्लाह से पूछूं कि मुसीबत आए तो क्या करना है, मैं अल्लाह से पूछूं कि कमाई करनी है तो कैसे करनी है, मैं अल्लाह से पूछूं कि मैंने ड्रेसअप होना है तो कैसे होना है, मैं अल्लाह से पूछूं कि मैंने बात करनी है तो कैसे करनी है, मैं अल्लाह से पूछूं मैंने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात रखने हैं तो कैसे रखने, मैं अल्लाह से पूछूं कि मेरे फराइज क्या है एज अ वाइफ, मेरे फराइज क्या है एज अ बीवी, यानी एज अ माँ, मेरे फराइज क्या है एज बेटी। हर चीज में उसकी नजर अल्लाह की तरफ होगी, क्योंकि उसने अल्लाह को इलाह बना लिया। भी कोई छोटी बात है, कोई छोटी बात है ये इलाह बना लेना किसी को? हमने तो ऐसे ही कह दिया, हमने कुछ समझा ही नहीं इलाह होता क्या। जिंदगी का मरकज, सेंटर ऑफ योर लाइफ आपका इलाह है, खुदा बना लेना किसी को, छोटी बात है ये? तो अकीदा तौहीद छोटी बात नहीं है। अगर सिर्फ क्लास में बैठे हुए तवज्जो अल्लाह की तरफ है और क्लास से उठे अल्लाह भूल गया, तो फिर क्या तौहीद है और क्या अकीदा तौहीद है हमारे अंदर? तो जमे नहीं ना, तवज्जो उसकी तरफ नहीं रही। अल्लाह तआला ने तो प्रैक्टिस कराई है, दिन में 5 दफा मेरी तरफ रुक करके खड़े हो, मेरे किबले की तरफ रुक करके खड़े हो, यानी तुम अपना रुख अल्लाह की जानिब कर लो। 5 दफा दिन में ये प्रैक्टिस कराई है, ताकि जब तुम मुसल्ले से उठो तो तब भी तुम्हारा रुख अल्लाह की तरफ हो। इसलिए ये चीज इतनी बड़ी है, लेकिन आज तक अफसोस है कि हम जाहिली अकीदे में पले बड़े हैं और उसी को हमने थामा हुआ। हमें पता ही नहीं चला कि कलमा बोल के हमने कितना बड़ा एक इकरार कर लिया। और जब हम समझते इसको अगर, तो हमारी जिंदगियां बदल जाती। कोई जाहिली अकीदा आज बाकी है कि नहीं, या सब मिटा दिया आपने? तो यह जाहिली अकीदा, एक एक की सिर्फ बात करूंगी, वैसे तो बेशुमार है, सिर्फ एक की बात करती हूँ आज। मटीरियलिज्म क्या है? मादा परस्ती, मादे को पूजना क्या है? कि अल्लाह ताला ने तो क्या बताया कि जात पात, नस्ल, रंग, जुबानी, ये सब इस चक्रों में नहीं पड़ना। कोई किसी से अरबी ना अजमी से ऊपर है, ना अजमी अरबी से ऊपर है, ना काला गोरे के ऊपर है, ना गोरा काले के ऊपर है। इज्जत है तो सिर्फ तकवा वाले की है। लेकिन मादियत परस्ती ने क्या सिखाया कि हर इंसान को तोला पैसा देख के, उसका रंग, उसकी बरादरी, उसका कबीला, उसका स्टेटस, उसकी गाड़ियां देख के, उसके घर देख के, उसका बिजनेस देख के, तब उनसे मुलाकातें करेंगे, तब उनसे मिलना जुलना रखेंगे। ऐसे ही थोड़ी हम हर एक से मिल लेते हैं। आप किस तरह तोलते हैं लोगों को, सच बताइएगा? जाहली अकीदे के असरात हैं अभी तक या नहीं? तो जाहलियत को निकालना है अपने अंदर से, ठीक है? जो मादा परस्ती है ना, वो खुद खुदा फरामोशी है, अल्लाह को भूल जाना है। आज खुदा पैसा है, अल्लाह को खुदा नहीं बनाया, पैसे को बनाया, पैसे को हम पूजते हैं। इसी वजह से हमारी प्रायोरिटीज देखें, हमारे शौक देखें, हमारी लगन देखें किस तरफ है। हम भाग भाग के किधर को जाते हैं, खुद हर एक बंदा फैसला कर सकता है। तो ये छोटी बात नहीं मेरी बहनों, ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, बहुत बड़ी बात है। अबू जर फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास एक आने वाला आया मेरे रब की तरफ से, यानी कौन, मुस्लिम में आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो उसने मुझे खबर दी, या फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने मुझे बशारत दी, ये हदीस के अल्फाज, कि जो मेरी उम्मत में इस हाल में मरेगा कि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराया हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो अबू जर फरमाते, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अगरचे वो जिना करता हो, अगरचे वो चोरी करता हो। आपने फरमाया हाँ, अगरचे वो जिना करता हो, अगरचे वो चोरी करता हो। क्या मतलब है? यानी जो तौहीद के ऊपर इस दुनिया से रुखसत हुआ, ख्वाह वो कबीरा गुनाह का भी मुर्तकिब होगा, एक ना एक दिन वो जन्नत में दाखिल होगा। तो पता होना चाहिए तौहीद क्या है, पता होना चाहिए शिर्क क्या चीज है, ताकि शिर्क से बच सके और सच्ची तौहीद के ऊपर आ सके। और जब तक ये पता ही नहीं, तो शिर्क जिंदगी में आया हुआ, पता ही नहीं शिर्क क्या है। मुसलमान खुद को कहते हैं, अब देखें हम भी, मैंने आपको वाकया सुनाया कि वो ईसाई वफद ने क्या कहा, हम तो पहले से ही मुसलमान, हमें आप क्या मुसलमान करेंगे, हम तो पहले ही हैं मुसलमान। ना आपने फरमाया नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तो ये तो नहीं कि हम कहें हम मुसलमान हैं लेकिन हम शिर्क के काम कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने ईमान किस पे रखा है ये पता ही नहीं। और आज हमारी मुसलमान आबादी में बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनको नहीं पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। तोते को रटा दें या एक 80 साल का बूढ़ा कह रहा हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है, दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे तोते को कोई समझ नहीं, इसी तरह एक बूढ़ा आदमी, उसने 80 साल जिंदगी गुजार दी, उसको यही नहीं पता ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। तो सीखें ला इलाहा इल्लल्लाह को, सीखें समझें। नज़ला, उसने नाजिल की, किसने, वो अल्लाह जिसका ये तारुफ आया है। कौन सा अल्लाह, जिसके बारे में है कि ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके अलावा कोई इबादत के लायक ही नहीं, जो हई है, जो कय्यूम है, उसने नाजिल की है। अलैकल किताब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर, आपके दिल मुबारक पर ये किताब नाजिल हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से खुद घड़ के नहीं ले आए, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया इस किताब में कि अल्लाह ने नाजिल फरमाया। नज़ला बाबे तफ़ईल से इसके अंदर भी बतदरीज नाजिल होने का माना भी आता है। तो अल्लाह ताला ने तकरीबन तकरीबन 23 साल के अंदर इस किताब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। आप देखें कितना अरसा होता है 23 साल, कोई मामूली वक्त नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। जब हम इस किताब को सीखने के लिए आते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, कितनी देर पे हमारे दिल में उतर जाए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या होता है, ये कोर्स कब खत्म होगा, कितना लंबा है, अच्छा इतने साल, 5 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे, ये तो बहुत लंबा है। जाहलियत में हम चाहे 10-20 साल गुजार चुके हों, उसके ऊपर हमें अफसोस नहीं होता, जितनी हमारी उम्रें हैं खुद सोचें कि उतनी उम्र जहालत में गुजार दी, उस पे भी कोई रोना है, लेकिन इस पे बड़ा दुख होता है कि अच्छा इतना लंबा, अच्छा कितने दिन क्लास है। अब ये भी मसला है कि अब क्लास भी हफ्ते में एक दफा ही हो, हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, और कोर्स भी इतना होना चाहिए कि बस साल में खत्म हो जाए। ये तो 23 साल में तकरीबन उतरी पूरी किताब, हम कितनी तेजी से इसको लेना चाहते हैं। और इसमें हिकमत थी, इतने अरसे में उतरने में हिकमत थी बहुत बड़ी। इंसान एब्जॉर्ब करता है चीज को, फिर उसको अमल में लेकर आता है। और अगर एक बार ही दे दी जाती तो वैसा नहीं हो सकता था अमल उसके ऊपर। तो तजरीज में भी खैर है, थोड़ा थोड़ा लेने में भी खैर है। तो थोड़ा लें आप, उसको अमल में लेकर आए, उसको सोचें, उसको समझें, उस पर तदब्बुर करें, फिर आगे चलें। इसलिए इल्म लेने में ना सबर की बहुत जरूरत होती है। क्या कहा था खुजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप मेरे साथ सबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इल्म लेने में सबर चाहिए। ठीक है, तो जब आप इस किताब की तरह आए तो ये सोच के आए कि सहाबा को, उनको तो 23 साल में मिला ये कुरान। अगर मुझे 6 साल में मिल जाता तो बहुत बहुत जल्दी मिल गया। इसमें हरी ना करें, इसमें जल्दी नहीं मचाएं, सबर से चलें। तो ये किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई बिल हक, साथ हक के। हक का मतलब क्या है? हक का एक तो मतलब है यानी सच्चाई के साथ, सच्चाई लेकर उतरी। इसमें जितनी बातें हैं वो सच है। नंबर 2 इसका मतलब क्या है? ये बामकसद किताब है। ऐसे नहीं कि कोई बस ऐसे ही बातें बता दी गई, जैसे लोग किताबें लिखते हैं बस सिर्फ अपना नाम और शोहरत के लिए। नहीं, इसका एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? हिदायत। और तीसरा भी माना है हक का। हक का एक माना ये भी किया गया है कि कोई कॉल और फेल उस वक्त हक कहलाता है जब वो ऐसे पाया जाए जैसे होना चाहिए, और जब उसकी जरूरत हो तभी वो उस वक्त आए। तो इसका मतलब है जब इसकी जरूरत थी तभी ये उतरा, ये किताब, ये कलाम तब उतरा था। ये हक है, और इसके हक हमारे ऊपर भी तो है ना, हम इसका हक दे रहे हैं। इसका हक क्या है? कभी जानना कि इसका भी कोई हक है? ये तो अल्लाह ताला ने हक कलाम उतारा है, हमने कभी परवाह भी की है इसको हक देने की? हमारी जिंदगी में हम कितना इसका हक अदा करते हैं? इसका हक है, इसको पढ़ा जाए, इसको सीखा जाए, इसको समझा जाए। मगर आज तो ये एहसास भी खत्म हो गया कि ये भी कोई कलाम है जिसके साथ वक्त लगाया जाए। एहसास ज़यां भी नहीं रहा। हमने दूसरों को क्या पहुंचाना था, हम तो खुद भी लुटा बैठे अपनी मता। असहाबे सुफा को देखें, वो कैसे थे? वो लोग अपने घर बार काम कारोबार सब छोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में क्यों बैठे हुए थे? ये इल्म लेने के लिए। तो अल्लाह ने हमें हक दिया, इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं। मुसद्दिकन लिमा बैन यदई, ये तस्दीक करने वाली है उसके जो इससे पहले आई, यानी जो इससे पहले जो भी कलाम आए, जो भी सुहूफ, जो भी किताबें, जो भी नाजिल हुई, उनकी तस्दीक करती, उनको वेरीफाई करती। बैना यदई का मतलब क्या? जो इससे पहले थे, यानी उनको साबित करती है कि उनमें से कौन सी बातें थी जो सही है, क्योंकि वो सब तो डिस्टॉर्ट हो गए ना। सबकी जितने भी तालीमात उनके अंदर थी वो सब उलट पुलट कर दी, कुछ अंदर खुद अपनी चीजें शामिल कर दी, और उसका वो हुलिया ही कुछ से कुछ बना के रख दिया। तो ऐसे तो वो चीजें नहीं उतरी थी, ऐसे वो कलाम नहीं उतरे थे। तो ये बताती है किताब कि उनमें से कितनी चीजें हैं जो अल्लाह की तरफ से, और कितनी हैं जो लोगों ने एडिशंस की हुई। तो तस्दीक करती उसकी जो अल्लाह की तरफ से आया। वह अनजलत तौरात वल इंजीला मिन कब्लु हुदन लिन्नास। अब याद रखिएगा बीच में ये ला लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे रुकना नहीं है, इसको पूरा ले जाना है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस बन रहा है। वह अनजलत तौरात वल इंजीला, और उसने नाजिल की तौरात और इंजील मिन कब्लु हुदन लिन्नास, इससे पहले। किससे पहले? यानी कुरान से पहले। हुदन लिन्नास वो हिदायत थी लोगों के लिए, पहले वो किताबें भी हिदायत की किताबें थी, वो किताबें भी उन उन किताबों के बारे में भी आता है। सूरह मायदा में अगर देखें कि वो हुदन थी, वो नूर थी, वो उसमें मौइजा थे यानी वाजो नसीहत थी, उनके बारे में भी यही कहा गया। तो इसका मतलब कि अपने जमाने में वो किताबें भी हिदायत का पर्पस ही सॉल्व करती थी, हिदायत देने वाली थी। अब क्या हुआ फिर, अब क्या क्यों नहीं उससे हिदायत ले सकते? याद रखिए तौरात के बारे में तो ये आता है कि तौरात तो बहुत दफा तो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, यानी तौरात के नुस्खे जला दिए गए। जिस वक्त बुख्त नजर आया था उसने तो सारा यानी यरूशलम की ईंट से ईंट बजा दी, हैकल को तबाह हो बर्बाद कर दिया, ये तौरात के नुस्खे खत्म कर दिए। तो फिर तो बाद में हजरत उजैर अलैहिस्सलाम और जो भी लोग बाकी बच गए थे बाबुल की असीरी से, कैद से निकल के आए थे, दोबारा फिर उन्होंने अपने हाफ़िज़े से तौरात लिखवाई थी। और फिर इसके अंदर सीरत भी मूसा अलैहिस्सलाम की शामिल कर दी गई, इसमें और भी चीज़ें शामिल कर दी गई। तो कुरान तो उसको तौरात कहता है ना जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, क्या जो बाद में आने वालों ने कई शामिल की चीजें, कईयों ने लिखी, वो तो फिर तौरात नहीं कहलाएगी ना, वो तो फिर उनकी अपनी बातें जो उनकी याददाश्त से थी, जो उनको जुबानी या जैसे भी याद थी तो उसके जरिए उन्होंने लिखी। इसी तरह इंजील का भी ये बात आती है कि इंजील भी नाम किसका है, जो खुतबात और जो अकवाल ईसा अलैहिस्सलाम के थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के जो आखिरी 2-3 साल जमीन पे थे उनके, तो उन्होंने जो इरशादात फरमाए थे, जो वही उनके पास आती थी, वो अब ये नहीं हमें पता कि वो उन्होंने अपनी जिंदगी में लिखवाए थे, वो लिखे गए थे, या लोगों को सिर्फ जुबानी याद थी वो चीजें, क्या था हम नहीं जानते इसकी डिटेल, कोई जरिया नहीं है मालूम करने का। हो सकता है कुछ लोगों ने लिख लिए हों, कुछ लोगों ने सिर्फ याद कर लिए हों, मगर बहरहाल जब वो उठा लिए गए तो उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत लिखी गई, फिर उनके ये लोगों ने अपनी अपनी याददाश्त से, अपनी मेमोरी से उनके जो खुतबात थे वो लिखे, और जो भी किसी के पास कोई लिख भी चीज फॉर्म थी उससे उससे लिख दिया। तो आज जो 4 किताबें मिलती हैं इंजील की, मत्ता, मरकज, लूका और यूहन्ना, ये 4 किताबें, ये इंजील वो वाली इंजील नहीं है जो अल्लाह की तरफ से उतरी है, बल्कि ये तो वो इंजील है जो फिर बाद में लिखी गई ना। अब आप इससे देख लेना कि यानी वो ओरिजिनल सोर्स से नहीं आ रही, ये तो बाद में बनाई गई। अब हमारे पास क्या चीज है कि हमें उससे पता चले कि इनमें से कौन सी बात ठीक है और कौन सी बाद में शामिल की गई? एक ही सोर्स है कि कुरान से टैली करके देखें, कुरान वेरीफाई करता है उन चीजों को। और फिर या उनके अंदर बाज जगह पे लिखा हुआ मसीह अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, या उन्होंने लोगों को ये तालीम दी, तो हो सकता है वो बातें ठीक हो, मगर कुरान उनकी तस्दीक कर सकता है ना, कंपैरिजन करके देख सकते हैं। और बारनबास बाइबल जो है उसमें तो ये साफ आता है कि अल्लाह का बेटा नहीं कहा गया ईसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन आज ये लोग उस बाइबल को नहीं देखते। बारनबास आप देख लें, उसके ऊपर सर्च करके भी आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगी ये भी एक बाइबल है, अब ये उसको लेते ही नहीं। तो ये पहले थी हिदायत का जरिया, लेकिन फिर वह अनजल अल फुरकान, अल्लाह ने फुरकान को नाजिल किया, फर्क करने वाले यानी कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया, और अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील को, चूंकि अब वो उनकी जो तालीमात हैं वो ही मिट गई थी, तो अब वो नो मोर हिदायत का जरिया तो नहीं हो सकती ना। इन्नल्लज़ीन कफरू बी आयातिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया अल्लाह की आयात के साथ, कुफर का मतलब क्या, इनकार कर दिया अल्लाह की आयात। सारों को इनकार करना अल्लाह की आयात का इनकार होता है, या फिर एक आयत का इनकार करना भी तमाम का इनकार होता है। जी, एक आयत का भी कुरान की अगर कोई इनकार करता है, देखिए आप वो पिछली तो अब चली गई ना, उनके ऊपर तो हम यही ईमान रखेंगे कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था हम उसको मानते हैं, ठीक है, तौरात थी, जो भी इंजील नाजिल हुई थी, हम उसको मानते हैं। सबसे पहले तो हम मानने वाले, बशर्ते कि वो जो ओरिजिनल वाली थी, ठीक है। मगर कुरान तो अब सेव्ड है, प्रोटेक्टेड है, अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। सूरह हिजर में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया और हिफाजत हो रही है आज तक, 1400 साल गुजर गए। अब इन आयात का कोई इनकार करता है, यानी इनकार की यही फॉर्म्स है ना, किसी एक आयत को कह देना हम नहीं इसको मानते, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, ये तो चल ही नहीं सकती। तो ये ना मानना, ये इनकार करना, लहुम आदाबुन शदीद, उनके लिए शदीद अजाब है। आप खुद सोचें, अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए इंतजाम किया हिदायत का, उसके लिए कितना बड़ा इतमाम हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम 23 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही लेकर नाजिल होते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत में बेस्ट इंसान को अल्लाह ताला ने चूज किया अपनी इस कलाम को नाजिल करने के लिए, कोई छोटी बात थी? और आराम से बैठे हुए किसी कोई कह दे उठ के, हम नहीं मानते जी, तो ये इसको कोई मामूली चीज ना समझना। जो ऐसा करेगा ना, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है अल्लाह के आगे, उसके लिए शदीद अजाब है। तो जुबान खोलने से पहले ना करोड़ों दफा सोचें कि जब ये कहें, ओ हाँ हम नहीं मानते, ये तो आज की, ये तो ऐसी पहले जमाने की बातें थी, ठीक है अब जो भी है, आज तो नहीं है एप्लीकेबल, आज तो ये चल ही नहीं सकता जी, तो ये इनकार करना ही है। गोए आप ये कह रहे हैं नऊज़ु बिल्ला के अल्लाह को नहीं पता था कि 21st सेंचुरी में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपने कैसे चलना है, नऊज़ु बिल्ला। याद रखना, वल्लाहु अजीजुन ज़ु इंतिकाम, अल्लाह ताला गालिब है, अथॉरिटी है उसके पास। और उसका गलबा कैसा है, अजीज वो होता है जिसके पास अल्टीमेट पावर है, यानी कोई और उसके आगे खड़ा नहीं हो कि ये कह सकता कि हाँ कोई उसकी पावर को चैलेंज करे या उससे ज्यादा पावरफुल हो। अजीज वो है कि जो जो मर्जी करे उसके पास अथॉरिटी है, जो मर्जी, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। अल्टीमेट पावर जिसको कहते हैं ना, अल्टीमेट अथॉरिटी, वो होना, वो अजीज है और दुंतकाम है, इंतकाम लेने वाला, यानी उसके पास पावर है कि वो इंतकाम ले, वो पकड़ कर सकता है। और उसके पास पावर एक एक होता है ना, इंतकाम इंसान कब नहीं देता, जब बेचारे के पास, इंसान के पास पावर ही नहीं होती, कहता है हम क्या, मैं किसी से बदला लूं, कैसे बदला लेगा, क्योंकि उसके पास कोई उसकी इतनी ताकत ही नहीं है। अल्लाह ताला के पास ताकत भी है, वो इंतकाम ले भी सकता है, मगर कुदरत के बावजूद वो, उसका हिल्म है, तहम्मुल है कि वो इंसान को छूट दिए रखता है। मगर याद रखना, ना जा उसके तहम्मुल पर कि बेढब है गिरफ्त उसकी, डर उसकी देरगीरी से कि सख्त है इंतकाम उसका। तो इस अल्लाह ताला के इंतकाम को आवाज ना दो, तुम इनकार करके जाओगे कहाँ, डर जाओ अल्लाह के इंतकाम से। मत कुरान के अंदर इस तरह की बातें लेकर आओ कि हम नहीं मानते, हम ये नहीं, हमें सही लगता, हमें वो नहीं सही लगता। याद रखो, ये कलाम किसकी तरफ से नाजिल हुआ है, उसकी तरफ से, इन अल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिर अर्दी वला फिस्समा, जिससे तो बात ही खत्म हो गई ना, जिससे कोई चीज छुपी ही नहीं है, जो जमीन में है, जो आसमान में, कोई चीज उससे छुपी भी नहीं। यानी उसके इल्म का आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर उसका इल्म कैसा होगा, सोचें, जिससे कोई शई उनमें आ गया, कोई चीज भी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। जैसे लुकमान अलैहि सलाम ने अपने बेटे से कहा था कि बेटा, एक खरदर के बराबर, राई के दाने के बराबर भी कोई चीज किसी चट्टान में भी होगी ना, अल्लाह उसको भी निकाल के ले आएगा। तो सोचें उसका इल्म कैसा है, उसने ये कुरान नाजिल किया है, तुम ऐसे ही मामूली बात समझते हो, तुम उठ के जब मर्जी उठ के कह दो हम नहीं मानते जी ये बात। सोचो तो सही कि किस इल्म वाले ने इसको नाजिल किया, जमीन की गहराइयों में कोई चीज हो, समंदरों में कोई चीज हो, गारों में कोई चीज हो, पहाड़ों में कोई चीज हो, कहीं छुपी हो, इंसान तेरे तो इल्म का ये हाल है, तेरे तो इल्म का ये हाल है कि जहाज गायब हो जाते हैं, इतने इतने बड़े जहाज 300 400 लोगों को उठाया होता है, वो गायब हो जाते हैं और पता ही नहीं है कि वो कहाँ गिरे, वो कहाँ हैं, आज तक नहीं समझ आई इनको। बरमूडा ट्रायंगल में वो चले जाते हैं कई दफा, शक इन हो जाते हैं जहाज उनकी, जिसकी हिस्ट्री कभी आप पढ़े, इनको यही नहीं पता वो गए किधर। मलेशियन एयरलाइन का जहाज गायब हुआ, आज तक यही नहीं पता वो गया कहाँ। इंसानों को तो छोड़े, एक इंसान की क्या हैसियत है, चलो वो तो छोटा सा एक इंसान कहीं छुप गया, तुम तो बड़े बड़े जहाजों को ट्रेस नहीं कर सकते, तुम क्या अपने इल्म की बातें करते हो, क्या अपनी अकल की बातें करते हो, और अल्लाह के कलाम के आगे लेकर अपनी अकल को खड़े हो जाते हो, इसका मुकाबला करते हो। तो वो जिससे छुपी ही नहीं, ये नहीं कहा गया सारा इल्म अल्लाह को है, बस इस बात को क्या के बात ही खत्म कर दी कि उससे कोई चीज छुपी, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड, उसका इल्म इतना है, और सिर्फ जाहिर में नहीं एक्सपोज, उसके बातिन, उसका जाहिर सब कुछ वो जानता है। वो तुम्हें ये किताब दे रहा तो उस पे भरोसा करो, उसकी बात को मानो, समझो कि ये जो कलाम उसने नाजिल किया ना, ये उस जात ने, कि आप देखते हैं ना जब आप कोई किताब पढ़ने लगते हैं, इसका ऑथर कौन है, इसको किसने इसको लिखा है जनाब, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो इस फील्ड का। अब हम ये देखते हैं भाई इस वायरस के बारे में, तो फलां डॉक्टर ने ये कहा, फलां ने, अच्छा उसकी क्या एक्सपीरियंस और उसका क्या नॉलेज है और उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, ये देखते हैं ना। अल्लाह की किताब उसकी तरफ से है, वो जात जिससे कोई चीज छुपी ही नहीं हुई, तो क्या उस पर भरोसा नहीं करेंगे। याद रखिए, जब इंसान अल्लाह का मकाम जान जाता है ना, कि वो अल्लाह कौन है, उसकी अजमत दिल में आ जाती है, वो अल्लाह वो है अच्छा, जिसने जिससे जिसका इल्म इतना वसी है, तभी उसके कलाम की भी अजमत दिल में आएगी। जब अल्लाह की आपके दिल के अंदर कोई अजमत नहीं है, कोई कदर नहीं है, तो उसके कलाम की भी कदर नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, अगर आपने ये देखना है ना कि आपके दिल में अल्लाह का मकाम क्या है, अब कोई थर्मामीटर तो है नहीं जिससे हम देख लें, कैसे पता चलेगा मेरे दिल में अल्लाह ताला का क्या मकाम है, तो आप जरूर देखें कि आपके दिल में अल्लाह की किताब के लिए, आपकी जिंदगी में अल्लाह की किताब का क्या मकाम है, वो ही मकाम आपके दिल में अल्लाह के लिए। जितनी मोहब्बत, जितना वक्त, जितनी अकीदत, जितना आप इसके लिए अपने आप को देंगे इस किताब के लिए, उतना ही पता चलता है कि आपकी दिल में, आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला का क्या मकाम है। और जितना उसके कलाम को आप पीछे फेंकेंगे, इसका मतलब है आप अल्लाह ताला की कदर ही नहीं पहचानते, आपने जाना ही नहीं अल्लाह कौन है, आपको पता ही नहीं। इसीलिए फिर हम जॉब के लिए भी भागते हैं, घरों के कामों के लिए भी भागते हैं, बच्चों के कामों के लिए भी भागते हैं, और कुरान को पीछे डाला होता है, इसके लिए हम वक्त नहीं निकाल सकते, बाकी सब चीजों के लिए वक्त है, इसके लिए वक्त नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता ना, ये प्रॉब्लम है, वैल्यू नहीं पता है, और ये सच बात है। ये ना कहे, नहीं नहीं जी हमने तो बड़ा इसको ऊपर रखा हुआ है शेल्फ के ऊपर, बड़ा हम इसकी इज्जत करते हैं, हम तो इसको उठाते ही नहीं है, तो उठाते ही नहीं है, वाकई नहीं फिर उठाते, क्योंकि इज्जत इतनी हम करते ना कि हम इसको हाथ ही नहीं लगाते, तो हमने तो इतना मुकद्दस इसको किया है, ये इसको कदरों कीमत करना नहीं है। जब कदरों कीमत इसकी आती है ना, तो चाहे कितनी मसरूफियत हो, बच्चे घर में हैं या नहीं है घर में, गर्मियों की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां, वीक डेज है या वीकेंड है, मसरूफियत ज्यादा है या कम है, घर में मेहमान है या नहीं है, फिर कोई चीज इस किताब के रास्ते में हायल नहीं होती। आप मुझे बताएं कोई और हस्ती, उसका नाम आप लें जो, जिसके लिए आप ये बात कह सकें, इन्ना हु ला यख्फा अलैहि शेउन फिर अर्दी अला के समय, कि बेशक वो है जिसके पर कोई चीज पोशीदा नहीं है जमीन में और ना आसमान, ये किसी और के लिए कह सकते हैं, यहाँ पे लाजमी अल्लाह ही का नाम आएगा, और कोई हस्ती ऐसी नहीं, चाहे वो ईसा अलैहि सलाम हो, चाहे वो कोई फरिश्ते हों, चाहे वो कोई जिन्नात हो, चाहे वो कोई कोई गैब का दावा करने वाले लोग हों, कोई कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर तो कोई चीज छुपी ही नहीं हुई आसमान और जमीन, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता।
जब अल्लाह के मुकाबले में कोई और हस्ती नहीं है इस कायनात में, तो मुझे ये बताएं अल्लाह के कलाम के मुकाबले में और कौन सी किताब हो सकती है, और कौन सा इल्म हो सकता है, और कौन सा कलाम हो सकता है? जब अल्लाह का कंपैरिजन किसी और से नहीं हो सकता, तो उसके कलाम का कहां से कंपैरिजन किसी और के साथ हो सकता है? फिर भी हम भाग भाग के दूसरी चीजों को लेते हैं, भाग भाग के उनके पीछे हम दीवाने हुए होते हैं, कभी शॉपिंग के शौक में, कभी काम कारोबारों के शौक में, कभी और चीजों के शौक में। वो शौक हमें ज्यादा प्यारे होते हैं इससे, इसके इल्म से। क्यों? इस वजह से कि इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वो कदर ही नहीं हमने पहचानी। क्योंकि हाँ, अल्लाह ही की कदर नहीं हमारे दिलों में, तो उसके कलाम की कदर क्या होगी? जिसको अल्लाह की कदर आ गई ना, वो इस कलाम की कदर करेगा, सिर्फ वो कर सकता है। अल्लाह अकबर। तो जांच लें, सारे ही जांच लें अपने दिलों के अंदर, और फिर उसके बाद ना दावे करें कि हाँ मुझे तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत है। अगर अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, तो उसके कलाम से बहुत मोहब्बत होगी फिर।